ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो श्री रामनवमी महामहोत्सव पे आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और भगवान रामचंद्र का तो कोई परिचय, उनके विषय में लीलाएं सब जानते हैं, अनेकों बारी सब भक्तों ने सुना है। हरे कृष्णा। तो सब जानते हैं भगवान रामचंद्र के विषय के बारे में, और यही कारण था कि शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को भी बहुत संक्षेप के अंदर बोला भगवान राम के विषय में, क्योंकि राम इतने प्रचलित हैं सभी अवतारों में, जितने भी अवतार हैं उन सब में अगर देखा जाए तो सबसे प्रचलित अवतार कौन से हैं? भगवान रामचंद्र, स्वाभाविक है। और सबसे कम आक्षेप भी कोई किसी पे लगाता है तो भगवान रामचंद्र ही है कि नहीं? क्योंकि कृष्ण भगवान है, बहुत फेमस है, मान लिया, लेकिन फिर भी लोग बहुत सारे जो है भगवान के ऊपर, थोड़ा शांति बनाइए और एक बार मोबाइल फोन चेक कर लीजिए कृपया करके, बीच में ना बजे बंधु। तो जो है भगवान रामचंद्र जो सबसे प्रचलित देखा जाए तो अवतार है। इस्कॉन भक्तों का क्या कर्तव्य है, सबसे प्रचलित किसको बनाना है? श्री चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के अंदर ये बताते हैं कि वही राम जो है किसके रूप में आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो एनीवे, तो आज राम नवमी के अवसर पे तो लोग तो बहुत सारे भजन गाते हैं, भय प्रकट कृपाला श्री रामचंद्र कृपाल, ऐसे बहुत सारे भजन आज लोग गाते हैं और भगवान रामचंद्र को याद करते हैं। मैं भी सोच रहा था कि हम क्या प्रामाणिक प्रार्थनाओं को भगवान को अर्पित कर सकते हैं, तो ये प्रार्थना मेरे दिमाग में आई पंचम स्कंद के 19वें अध्याय के अंदर, 18वां और 19वां अध्याय जो पंचम स्कंद का है उसमें जम्बूद्वीप का वर्णन है, और अलग अलग वर्ष के अंदर जो है भगवान के अलग अलग अवतारों की उपासना करते हैं उनके भक्त। तो ऐसे किम पुरुष लोक, किम पुरुष वर्ष 519.128, तो वहां पर किम पुरुष वर्ष के अंदर जो निवासी रहते हैं वे उनके आराध्य ईश्वर है भगवान श्री रामचंद्र। और उन किम पुरुष वर्ष के जो जो किम पुरुष मतलब समझते हैं क्या है, पुरुष नहीं है लेकिन किम पुरुष मतलब किन्नर और पुरुष बेसिकली, तो जो कि मतलब बंदर भी नहीं है और लेकिन उनका शरीर जो है मनुष्य जैसा है और मुख बंदर जैसा है और पूंछ है ना, तो ये है किम पुरुष बेसिकली। तो किम पुरुष वर्ष के निवासी इस प्रकार के, इनके लीडर हैं हनुमान जी बेसिकली, खासकर उन भक्तों के। तो वे श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की उपासना करते हैं, और हनुमान अरिष्ट अरिष्ट ऐसे करके कुछ नाम है, तो वे भगवान रामचंद्र उनके उपास आराध्य देव हैं, और उनके बहुत सुंदर वे प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये सेक्शन मैंने सोचा कि आज के लिए बहुत अप्रोप्रिएट रहेगा, और इसमें श्रील प्रभुपाद के बहुत ही सुंदर तात्पर्य भी हैं, बहुत ही। तो ये 8 श्लोक हैं, तो हम इसका उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो ये बहुत ही शुभ दिन है, आज भगवान रामचंद्र के प्राकट्य तिथि है और शायद 15 दिन या 1 महीने बाद में सीता देवी का भी प्राकट्य दिवस होगा, सीता नवमी। कृष्ण और राधा रानी दोनों अष्टमी के दिन प्रकट हुए और रामचंद्र और सीता देवी दोनों नवमी के दिन प्रकट हुए जो है। तो भगवान का अपना दिन विचार होगा तिथि चूज करने का, लेकिन एनीवेज तो नॉर्मली भगवान रामचंद्र के विषय में सब कहते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो है आदर्श राजा थे, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, सब प्रकार से। तो लोग इस प्रकार से, या भगवान रामचंद्र बहुत महान थे। जैसे सुबह हम पढ़ रहे थे कि भगवान रामचंद्र ने जैसे कि एक हाथी का बच्चा धनुष ये गन्ने को तोड़ता है, ऐसे ही उस शिव धनुष हर धनु को भगवान रामचंद्र ने उसी प्रकार, जिसको 300 लोग उठा करके लेके आए थे, उसको ऐसे ही खेल खेल में बस प्रत्यंचा चढ़ाते हुए तोड़ दिया। या जैसे शाम को आप ड्रामा में देखेंगे कि भगवान रामचंद्र ने वानर सेना से पूरा समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया। सोचिए 1200 किलोमीटर लंबा सेतु, कोई सिविल इंजीनियर सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा जो है पुल बनाने के लिए, 100 योजन लंबा, वो भी समुद्र के ऊपर, है ना, और वो भी खाली बंदरों ने, है ना, और उनके सहारे पूरा राक्षसों की सेना को जीतना एक बग। तो क्या ये भगवान रामचंद्र का वास्तविक गुण है, क्या ये भगवान का वास्तविक महिमा है? सॉरी, तो सुखदेव गोस्वामी 9वें स्कंद के अंदर कहते हैं कि वानर सेना के द्वारा राक्षसों को जीतना, समुद्र के ऊपर पुल बनाना, धनुष को तोड़ना, ये सब भगवान की असली महिमा नहीं है। ये सब तो ठीक है, भगवान है, करते हैं। तो ऐसा करके वो एक श्लोक छोड़ देते हैं कि ये भगवान की असली महिमा नहीं है या उनकी भगवत्ता नहीं है, कि रावण को मारने के लिए उनको खुद को आने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा मेरे को एक भक्त, हम ऐसे ही मजाक मजाक में कह रहे थे कि क्या भगवान रामचंद्र रावण को मारने के लिए अवतरित हुए थे? तो ऐसी डिस्कशन चल रहा था सब मजाक मजाक के अंदर, तो बोला रावण को मारना तो बहुत आसान था, कुछ नहीं, उसने वरदान में ये तो नहीं मांगा था कि मुझे हार्ट अटैक ना हो, है कि नहीं, तो बस एक हार्ट अटैक देना था भगवान को, बोले मार देते, है ना। तो एनीवेज, तो कुल मिलाकर के इन श्लोकों के अंदर भगवान राम के विषय के में हनुमान जी प्रार्थनाएं करते हैं और सुग्रीव और एक और नाम है, उनके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है इन नाम के प्रति, आर्ष्ट्रीषेण ऐसे करके एक और महान भक्त हैं भगवान रामचंद्र के। तो ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इन प्रार्थनाओं को, उनमें बहुत सुंदर तत्व की चर्चा है, क्योंकि भारत में भी भगवान रामचंद्र को लोग बहुत सेंटिमेंटल रूप के अंदर ले लेते हैं, भावुक रूप के अंदर ले लेते हैं। तो और वो सही भी है एक प्रकार से, क्योंकि लोगों का सहज प्रेम है भगवान रामचंद्र के प्रति, लेकिन फिर भी भागवत के जो दृष्टिकोण से यदि हम समझने का प्रयास करें तो कुछ रामायण के मुख्य पहलुओं के ऊपर बहुत सुंदर कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, जो कि मेटीरियल अंडरस्टैंडिंग से बहुत ऊपर है। और वही अंडरस्टैंडिंग हनुमान जी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो पहला श्लोक है, पहला और दूसरे श्लोक के अंदर केवल ओवरव्यू है। श्री शुक उवाच, ये जो पहले तीन श्लोक हैं इसको आप मेरे साथ में प्रोनाउंस करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोज हैं, इनका कोई खास मीटर नहीं है। किम पुरुषे वर्षे भगवन्तमादि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तच्चरण स निकर्ष भिरतः परम भागवतो हनुमान सह किम पुरुषे विरत भक्ति रूपास्ते आर्षिशेषेण सह गंधर्वैरनुगीयमानां परम कल्याणीं भर्तृ भगवत कथां समुपशृणोति स्वयं चेद गायति। तो ये जो दो श्लोक हैं इसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में महान भक्त हनुमान वहां के निवासियों सहित लक्ष्मण अग्रजम सीताभिरामम रामम, हनुमान वहां के निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। गंधर्वों का समूह सदा ही भगवान रामचंद्र के यशों का गान करता है, ऐसा गायन अत्यंत मंगलकारी होता है। हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष आर्षिशेण अत्यंत मनोयोग से इस यशोगान का निरंतर श्रवण करते हैं। हनुमान जी निम्न मंत्रों का जप करते हैं। तो ये तीसरे श्लोक से लेकर के जो तीसरा चौथा पांचवा और छठा, ये छह श्लोक हनुमान जी बोलते हैं, और जो सातवां और आठवां श्लोक है वो कई आचार्यों का मत है कि ये सुग्रीव की प्रार्थना है भगवान रामचंद्र को। तो जो मैंने इसलिए इनको कैटेगराइज करने का प्रयास किया श्लोकों को, तो तीसरा श्लोक है बेसिकली ये है कि मैं भगवान रामचंद्र को प्रणाम करता हूं। तो किसको क्यों प्रणाम कर रहा हूं उनको, तो ये उनके कुछ गुण हैं, उनके क्वालिटीज के विषय में चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षण शील व्रताय, नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय, नमः साधुवाद निकषणाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति। तो इसके अंदर बहुत सारे जो हैं भगवान के विषय में नाम आते हैं। ओम नमो भगवते, मैं श्री भगवान को नमस्कार करता हूँ। किनको नमस्कार करता हूँ, जो कि उत्तम श्लोक हैं, आर्य लक्षणशील व्रत हैं, उपशिक्षितात्मन उपासित लोक हैं, साधुवाद निकषण हैं, ब्रह्मण्य देव हैं, महापुरुष हैं, महाराज हैं। तो इसका इस प्रकार से अनुवाद है, हे प्रभो, मैं ओंकार बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो उत्तम पुरुषों में सर्वाधिक हैं। आप आर्यजनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार हैं, आपके गुण तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाले हैं, और आप अपने इंद्रियों तथा मन को सदैव अपने मश में रखने वाले हैं। सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल स्वर्ण के गुण की परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे स्पर्श मणि हैं जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों के द्वारा उपासित हैं। हे परम पुरुष, आप महाराज हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये श्लोक के अंदर भगवान के कई सारे नामों का, भगवान के कई सारे गुणों का वर्णन किया गया है। पहला क्या है, उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक मतलब जिनकी अर्चना सदैव उत्तम श्लोकों में की जाती है, जिनकी प्रशंसा बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा भगवान को जो है उपासना की जाती है, और आने वाले श्लोक बहुत ही सुंदर है। तो ये भगवान का एक नाम है, उत्तम श्लोक। दूसरा है आर्य लक्षण शील व्रत, कि भगवान कैसे हैं, समस्त आर्य जन जितने हैं, आर्य मतलब सिविलाइज्ड लोग, सभ्य लोग, तो जितने भी लोग अपने आप को सभ्य मानते हैं और उनके अंदर जितने भी गुण हो सकते हैं, उन सब गुणों के क्या हैं, भगवान भंडार हैं। ये बात सत्य भी है, तभी तो रामचंद्र के रूप में बोला जाता है आदर्श पति हैं, आदर्श पुत्र हैं, है कि नहीं, हर तरीके से वे आदर्श हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप सभी मनुष्यों के में जितने भी आर्य सभ्य लोगों के अंदर जितने भी गुण हैं, उन सब के गुणों के आप क्या हैं, खान हैं, भंडार हैं। फिर तीसरा गुण बता रहे हैं, उपशिक्षित आत्मने, कि भगवान की इंद्रियां क्या है, वश में है। क्या आप कृष्ण के विषय में बोल सकते हैं कि उनकी इंद्रियां उनके वश में है, हाँ या नहीं? ऑब्वियसली कृष्ण की इंद्रियां सदैव उनके वश के अंदर हैं। भ्रम होता है, कई लोग यहां भी कह रहे थे नहीं है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा उनकी इंद्रियां उनके वश में रहती है। इसलिए भगवान का क्या नाम है? ऋषिकेश। भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण की लीलाओं से ऐसा लगता है कि उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, है कि नहीं? पैदा होते ही माखन चोरी करने लगे, है कि नहीं? चोर की इंद्रियां थोड़ी उसके वश में होती है, उसकी इंद्रियां तो जो व्यक्ति जो वस्तु चोरी के लिए योग्य होती है उसके वश में होती है। जहां देखेगा वही चोरी करने जाएगा। और एक प्रभुपाद जी का कई बार लोग आते थे, बोले प्रभुपाद कृष्णा मैरिड 16,000 यू नो वाइफ्स, कि उन्होंने 16,100 रानियों से शादी की। प्रभुपाद कहते वाई ओनली 16,000, कृष्णा कैन मैरी 16 मिलियन, कृष्णा कैन मैरी 16 करोड़, यू नो दैट शोज ही इज गॉड। कह रहे हैं प्रभुपाद जी से पूछा कि कृष्ण ने देखो भगवान 16,100 रानी से शादी की। प्रभुपाद कह रहे 16,000 क्यों, 16,00,000, 16 करोड़ से शादी कर सकते हैं, इससे सिद्ध होता है कि वो क्या है, भगवान है। साधारण व्यक्ति थोड़ी कोई 16,000 रानी रख सकता है, पत्नियां रख सकता है। तो अभक्त होता है वो तो रिलिश करता है, लेकिन कोई अभक्त होता है तो वो ईर्ष्या करता है कि देखो हमारे पास एक भी नहीं है, भगवान का 16,000 है कि नहीं? तो वो ऐसे ईर्ष्या करता है। लेकिन रामचंद्र के विषय में अधिकांश लोग बोले कि नहीं, वो बिल्कुल आदर्श है, फॉलो करना हो तो रामचंद्र को फॉलो करो। तो इसीलिए कह रहे उपशिक्षित आत्मना, कि आपकी इंद्रियां सदैव आपके वश में है। कम से कम साधारण लोगों को तो ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं? और उपासित लोकाय, इसीलिए क्या है, समस्त श्रेणियों के लोगों द्वारा सदैव पूजित हैं। हर प्रकार के लोग आपकी पूजा करते हैं, है कि नहीं? चाहे वे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी आपकी उपासना करते हैं। यहां तक कि निषाद भी क्यों ना हो, वानर भी क्यों ना हो, सब लोग भगवान रामचंद्र की पूजा करते हैं। उपासित लोकाय, सदैव आपकी पूजा करते हैं, उनके द्वारा उपासित हैं। साधुवाद निकषणाय, ये बड़ा सुंदर वर्ड है। साधुवाद मतलब क्या है कि जो साधु लोग हैं तो उनके अंदर नॉर्मली बहुत सारे गुण शास्त्र में वर्णन किया गया। तितिक्षव कारुणिक सुहृदा सर्वदेहिना मजात शत्र शांता साधव साधुभूषण, कि साधुओं के अनेक गुण हैं और उन गुणों से भगवान भी बहुत आकर्षित होते हैं। लेकिन श्री भगवान कैसे हैं, जो कसौटी होती है, कसौटी समझते हैं ना, सोने को टेस्ट किया जाता है उससे कि असली है या नकली है, कितना कैरेट गोल्ड है इत्यादि। आपको सोने कई टेस्ट होते हैं, लेकिन कसौटी पे उसको खरा उतरना चाहिए सोने को, अगर असली सोना है तो ऐसे हर चीज के कोई टेस्ट होते हैं। तो वैसे ही अब साधुओं के गुणों को टेस्ट करना हो तो किस स्थिति में टेस्ट किया जाता है? साधु के गुण कब टेस्ट होते हैं? विपरीत परिस्थितियों के अंदर, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो पता लगता है कि वह व्यक्ति कितना आध्यात्मिक जीवन में उन्नत है। प्रभुपाद जी एक बंगाली में कहावत कहते थे, मुझे एग्जैक्टली बंगाली कहावत तो नहीं याद, लेकिन उस प्रकार अर्थ है कि देखो कुछ लोग तोते की तरह भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस केवल नाम जप कर, मतलब शब्द बोलते हैं, नाम जप नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई उस तोते की गर्दन पकड़ता है तो क्या करता है, और क्या है, क्या टैं टैं करने लगता है कि नहीं? तब उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई। तो ऐसा नहीं कृष्णा कृष्णा करेगा वो, क्या वो अपने नॉर्मल साधारण कौवे तोते की भाषा में आ जाएगा। तो ऐसे ही साधु की परीक्षा होती है जब कोई विपरीत परिस्थिति में होता है। लेकिन कह रहे हैं कि भगवान ऐसे स्पर्श मणि हैं जो कि सभी उत्तम गुणों की परीक्षा करने में समर्थ हैं, है कि नहीं? कि मतलब कोई भी टेस्ट करना हो उत्तम गुणों का तो भगवान उसके आइडियल पैरामीटर हैं, बेसिकली भगवान रामचंद्र। फिर नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्रह्मण्य देवाय मतलब सभी ब्राह्मणों के द्वारा जो है भगवान उपासित हैं। फिर कह रहे हैं महापुरुषाय, कि वो महापुरुष हैं। महापुरुष का एक अंडरस्टैंडिंग जो हम समझते हैं वो ये है कि कोई महान व्यक्ति है, वो सच है, लेकिन यहाँ पे महापुरुष का मतलब है जो परम पुरुष है, ऐसा नहीं जो हम कॉमन टर्मिनोलॉजी के अंदर महापुरुष यूज करते हैं वर्ड, कि ये बड़े महापुरुष हैं, बड़े महान कार्य करते हैं। क्योंकि पुरुष तो एकमात्र एक ही व्यक्ति है कि नहीं? वो है भगवान, बाकी सब तो प्रकृति हैं, लेकिन फिर भी ये महापुरुष से यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है वो है परम पुरुष हैं। और महाराज, कि आप महाराजा हैं, सभी राजाओं के राजा हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो ये सब भगवान के गुणों को हनुमान जी याद करते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं। फिर चौथे श्लोक के अंदर वो कह रहे हैं कि मैं उन भगवान राम को केवल प्रणाम ही नहीं करता हूं, उनको शरणागत होता हूं, उनके प्रति मैं उनकी पूर्ण शरण ग्रहण करता हूं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है और इसके अंदर भगवान रामचंद्र तत्व के बारे में बताया गया है। यत्तद् विशुद्ध अनुभव मात्रमेकम्, यत्तद् विशुद्ध अनुभव मात्रमेकम्, स्वतेजसा ध्वस्त गुण व्यवस्तम्, प्रत्यक् प्रशांतम सुधियोपलंभनम्, हिय नाम रूपम निरहम प्रपद्ये। इसके अंदर हनुमान जी ने भगवान के जो है तत्व के विषय में 8 शब्द यूज किए हैं। पहला है विशुद्ध अनुभव, कि कौन भगवान राम को, कौन भगवान को समझ सकता है जो शुद्ध हो चुका है, विशुद्ध अनुभव। इसके विषय में जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, विशुद्ध अनुभव मतलब जो कृष्ण भावना भावित है, जो भौतिक प्रकृति के द्वारा दूषित नहीं है, तो उनका अनुभव, भगवान विशुद्ध हैं, उनका अनुभव कैसे किया जा सकता है? केवल विशुद्ध चेतना के द्वारा ही किया जा सकता है। इस भौतिक चेतना में रहने वाला व्यक्ति उसका अनुभव नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि किसी की आध्यात्मिक प्रगति को आप कैसे जज कर सकते हो, कि यह आध्यात्मिक जीवन में कितना इसने प्रगति किया है, बता सकते हैं क्या टेस्ट है उसका, किसी ने आध्यात्मिक कितना प्रगति किया है? प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया होगा, कितना भौतिक जीवन से विरक्त है, काफी क्लोज, मोर और लेस यही कि कितना वो भौतिक विषयों में उसकी रुचि नहीं है, कितना अनासक्त हो गया है, उसकी रुचि समाप्त हो गई है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बंदर में आते हैं, भगवान का मूर्ति देखते हैं तो भी रोते हैं, सिनेमा हॉल में जाएंगे तब भी रोएंगे, क्रोकोडाइल टीयर्स इजी टू क्राई इजी टू ड्राई, यू नो, मगरमच्छ के आंसू जैसे होते हैं, तो मगरमच्छ कभी आंसू नहीं बहाता, इसीलिए कहावत है वो, मतलब ना, तो इजी टू क्राई इजी टू ड्राई। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनके भौतिक जीवन में बहुत रुचि है और लगेगा ऐसे कि आध्यात्मिक जीवन में बहुत रुचि है, लेकिन उन लोगों के द्वारा भगवान अछूते हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद हैं। दूसरा शब्द वो कह रहे हैं, सॉरी, विशुद्ध अनुभव मात्रमेकम्, भगवान क्या है, एक हैं, केवल यू नो भगवान ही एकमात्र हैं। वो कह रहे हैं कैन बी पर्स इन द वेदांत ही डिस्क्राइब्ड एज बीइंग वन विदाउट अ सेकंड। अभी मैं पीछे एक प्रोग्राम में गया था तो एक व्यक्ति, एक लड़का कॉलेज स्टूडेंट मेरे को लेक्चर के बाद पूछने, क्वेश्चन पूछने के लिए आया, कह रहे कि भगवान का, आप कह रहे हैं कि भगवान मतलब जिनका कोई बिगिनिंग नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हर वस्तु का कोई बिगिनिंग है, आदि है, कोई प्रारंभ है, भगवान का भी तो कोई प्रारंभ होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए, कॉज होना चाहिए। मैंने बोला नहीं, भगवान बाय डेफिनेशन, परिभाषा से ही भगवान वो है जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, वे सबके प्रारंभ है, इसीलिए अनादि आदि गोविंद, उनका कोई आदि नहीं है, वे सबके आदि हैं। तो कह रहे ये तो बहुत मुश्किल चीज समझने के लिए। मैंने कहा भगवान को समझना आसान थोड़ी है, है ना, लेकिन बाय डेफिनेशन अगर जो भगवान का कॉज अगर कभी कोई हो गया तो वो भगवान हो जाएगा, हम उसको भगवान कह देंगे। तो बोला अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ इस विषय के बारे में, यू नो ये तो बहुत कंफ्यूज कर दिया आपने। मैंने कहा अच्छी बात है, कंफ्यूजन इज द बिगिनिंग ऑफ क्लैरिटी, यू नो नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू आर कंफ्यूज, दैट्स वेरी नाइस। तो कहने का अर्थ है कि लोग सोचते हैं तो कभी कभी लगता है कि भगवान क्या एक ही है, हाँ भगवान एक ही है, इज वन विदाउट अ सेकेंड। फिर कह रहे हैं स्वतेजसा ध्वस्त गुण व्यवस्थम, कि क्या है भगवान इन तीनों गुणों को से परे हैं। इसको कैसे हनुमान जी बता रहे हैं, स्वतेजसा, भगवान अपनी शक्ति से अपनी पोटेंसी से स्वतेजसा ध्वस्त गुण व्यवस्था, ये जो प्रकृति के तीन गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन सबको माया के भगवान इससे कभी कलुषित नहीं होते, भगवान इन तीनों गुणों से पूरी तरीके से परे हैं और अपनी शक्ति से कभी इनसे नहीं होते। क्यों ये बात हनुमान जी कह रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि देखिए भगवान जो है परम सत्य क्या है, परम सत्य तो निराकार है, और जब वो राम कृष्ण इत्यादि का रूप लेकर के आते हैं तो माया के वशीभूत उनका रूप होता है, क्योंकि फॉर्म मीन्स कि जहां पे फॉर्म मतलब रूप है तो वो केवल भौतिक प्रकृति के वशीभूत होके लिया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, भगवान चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, किसी भी समय प्रकृति के अधीन नहीं होते। फिर चौथा कह रहे हैं प्रत्यक। प्रत्यक मतलब वे दिव्य भौतिक नेत्रों से अदृष्ट हैं, कि भौतिक नेत्रों से आप उन्हें देख नहीं सकते। वैसे तो प्रत्यक मतलब प्रत्यक्ष जिसको आप देख सकते हो, लेकिन कह रहे किसके द्वारा देख सकते हो आप? ये चर्म चक्षु के द्वारा हम नहीं देख सकते, उसके लिए क्या चक्षु चाहिए? प्रेम चक्षु चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो वो भगवान जिनको आप अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते, मतलब ग्रॉस भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। पहले इन्होंने बताया कैसे देख सकते हो उन भगवान को आप? उन्हीं भगवान का अनुभव कर सकते हो। कैसे? विशुद्ध अनुभव भव मात्र, विशुद्ध चेतना के द्वारा देख सकते हो, लेकिन भौतिक नेत्रों से आप उन्हें नहीं देख सकते। फिर आगे क्या कह रहे हैं? प्रत्यक प्रशांतम। ये वही बात है बेसिकली कि भगवान स्व तेजसा ध्वस्त गुण व्यवस्थम, कि भगवान भौतिक गुणों से कभी डिस्टर्ब नहीं होते। प्रशांत का मतलब ये है, क्या हम सब डिस्टर्ब रहते हैं कि नहीं? क्यों डिस्टर्बेंस होती है? कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तम, हम अशांत हैं, है ना? और भगवान क्या है? प्रशांत, है ना? और क्या है? मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अत एव शांत। कि कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, कोई भुक्ति मुक्ति सिद्धि की इच्छा नहीं होती, इसलिए वो क्या है? शांत होता है। लेकिन जो भौतिकतावादी है सदैव अशांत रहता है, लेकिन भगवान का नाम क्या है? प्रशांत, प्रकृष्ट रूपेण शांत, जो कभी भी किसी वस्तु डिस्टर्ब नहीं होते। तो प्रशांत। फिर सुधिया उपलम्बनम। सुधिया उपलम्बनम का अर्थ है कि सुधिया मतलब धिया, धिया मतलब होता है बुद्धि। तो धिया मतलब, सुधिया मतलब क्या हो गया? अच्छी बुद्धि, सुंदर बुद्धि, सुमेधसा मतलब बहुत अच्छा कोई व्यक्ति बुद्धि हो जिसकी। तो वो सुबुद्धि किसे बोला जाएगा? अच्छी बुद्धि किसे बोला जाएगा? किस बुद्धि को अच्छी बुद्धि बोला जाता है? कृष्ण बुद्धि को, बेसिकली कृष्ण भावना। तो प्रभुपाद यहां ट्रांसलेशन वर्ड मीनिंग में कह रहे हैं सुधिया कृष्ण भावनाओं से उपलम्बनम, उस कृष्ण भावना से भगवान उपलब्ध कराए जा सकते हैं केवल और केवल, अन्य किसी भौतिक के द्वारा नहीं। क्योंकि भगवान प्रशांत हैं, उनको कोई अशांत व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो केवल सुधिया उपलम्बनम, कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति के द्वारा ही, जो कि भौतिक कामनाओं, कल्पनों और कल्पनाओं से अप्रभावित है, है ना? प्रभुपाद जी श्लोक करेंगे, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोच, तात्पर्य में कोट करते हैं। आगे जाके उत्तम भक्ति की जो डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो केवल उसी के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। फिर अंतिम दो वर्ड यूज करें, अनाम रूपम। अनाम रूपम मतलब जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वैष्णव सिद्धांत क्या है? भगवान का कोई भौतिक नाम नहीं है और भौतिक रूप नहीं है। जय श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौणताशील प्रभुपाद की जय। तो जो है, जिनका कोई भौतिक नाम और भौतिक रूप नहीं है। प्रभुपाद जी ने इसके विषय में बहुत सुंदर श्लोक दिया है, तात्पर्य दिया है इसके ना, दो तीन पेज का, कि जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या है ना? क्योंकि देखिए, जीवात्मा का नाम होता है, जीवात्मा का रूप होता है, लेकिन परमात्मा का भौतिक रूप नहीं होता, भौतिक नाम नहीं होता। जीवात्मा अपने नाम से भिन्न है, लेकिन भगवान अपने नाम से अभिन्न है, है ना? तो ऐसे। और अंतिम वर्ड क्या है? निरहम। निरहम मतलब, निरहम का अर्थ बताया है कि जो अहंकार रहित है, भगवान जिनके अंदर कोई भौतिक अहंकार नहीं है। दूसरा विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी का, ये जीव गोस्वामी का है कि भगवान के अंदर इस अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार क्या होता है? अहम, आईनेस बेसिकली, जो मैं की पहचान। तो जो सेल्फ रियलाइज सोल है वो जानते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं आत्मा हूं। और जो और उन्नत भक्त हैं वे जानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। और अगर भौतिक देहात्म बुद्धि के अंदर हम क्या सोचते हैं, हम भारतीय हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम बच्चे हैं, इत्यादि इत्यादि, तो यह अहंकार होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीवात्मा अपने आप को इंडियन, जर्मन ऐसा बोल सकता है। हम भी अगर बोलते हैं तो हम बोलेंगे ये चाइनीज भक्त हैं, रशियन भक्त हैं, जर्मन भक्त हैं, इंडियन भक्त हैं, है ना। लेकिन हम कभी ये तो नहीं बोलते कि जर्मन डीटीज हैं, इंडियन डीटीज हैं, ऐसा तो नहीं बोलते, है ना। हम हमेशा बोलते हैं कृष्ण ही है, हमेशा कृष्ण है, है ना। वो अलग बात है, प्रभुपाद जी ने लंदन ईश्वर, पेरिस ईश्वर नाम दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन हम कभी ऐसा तो नहीं बोलते कि जर्मन कृष्ण है या ये फ्रेंच राधा रानी है, ऐसा तो कभी भी नहीं बोलते। कृष्ण हमेशा कृष्ण है, चाहे वो किसी भी देश के अंदर हो, किसी भी ग्रह के रूप के अंदर हो। तो इसका अर्थ है कि भगवान के पास कोई भौतिक उपाधियां नहीं है, विदाउट मेटेरियल डेजिग्नेशन। ये जीव गोस्वामी का मत है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर का मत क्या है, निरहम, मतलब कि इसमें वो वर्ड यूज कर रहे हैं, निह को ज्यादा अपना देख करके अहम को इस्तेमाल दे रहे हैं, कि भगवान कह रहे हैं क्या कि भगवान एक व्यक्ति है। अहम मतलब कोई व्यक्ति होगा तभी तो मैं यूज करेगा वर्ड, है ना। तो वो इसीलिए इस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए संस्कृत ग्रामर के हिसाब से बताते हैं। तो ये भगवान राम के विषय में तत्व बता रहे हैं कि भगवान तीनों गुणों के परे हैं। भगवान को केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही, मतलब भक्ति शुद्ध चेतना के द्वारा, भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। भगवान को कोई भौतिक नाम रूप नहीं है इत्यादि। ये हनुमान जी बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक इस बात को बता रहे हैं, क्योंकि जानते हैं आने वाले समय के अंदर लोग ना यही सब आक्षेप करेंगे ही करेंगे कि राम का रूप तो माया का था, वो भी चलो महापुरुष थे, एक महान व्यक्ति थे, महान राजा थे, लेकिन कोई महान भगवान नहीं मानने वाला उन्हें। ऐसे भी बहुत लोग होंगे। या फिर क्या होगा, बहुत बारी राम कथा के अंदर आप देखते हैं कि जो राम का चरित्र ग्लोरीफाई करते हुए क्या क्या टीका दी जाती है कि देखो राम जैसा पुत्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए दशरथ महाराज ने आज्ञा दी कि वनवास चले जाओ, कहां राजा बनने वाले थे मतलब, और कहां उनको जंगल में भेज दिया, लेकिन रामचंद्र ने क्या है उस आज्ञा को पूरा फॉलो किया। तो सब बच्चों को, पुत्रों का ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसा ऐसा लोग शिक्षा देते हैं। लेकिन क्या ये सही शिक्षा है, गलत शिक्षा है, क्या कहते हैं, ये गलत शिक्षा सही है या गलत है? सर्वोपरि है, है ना, क्या बोलते हैं, मातृदेव भव पितृदेव भव, है ना। तो देखिए महाभारत और रामायण वेदों के इतिहास सेक्शन में आते हैं। सिर्फ दो इतिहास हैं, जैसे पुराण कितने हैं, 18 मुख्य पुराण हैं, और उपनिषद कितने हैं, 108 मुख्य उपनिषद है, लेकिन पुराण दो ही हैं, इतिहास दो ही है, रामायण और महाभारत। तो ये जो इतिहास होते हैं ये दो स्तर पे शिक्षाएं देते हैं, एक आध्यात्मिक स्तर पे और एक सामाजिक स्तर के ऊपर, यू नो। तो इनको इस स्तर पे भी बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है, और अधिकांशतः रामायण और महाभारत का इस्तेमाल किया ही इसलिए जाता है सोशल शिक्षाएं देने के लिए। जैसे कर्ण इतना पॉपुलर क्यों है महाभारत के अंदर, क्यों, क्योंकि महाभारत में कर्ण को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों दी जाती है? नहीं, दान तो एक है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं देखो मित्रता जिसने निभाई है कि नहीं। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं वो कर्ण को कभी जो है गुणगान नहीं करते उसका। ऐसी मित्रता का क्या फायदा जो दोस्त भी गड्ढे में जाए और उसको धक्का दे के गड्ढे में गिरा, बोले मैं भी आ रहा हूं, है ना। तो कर्ण ऐसा मित्र था। तो ऐसे ही रामलीला के अंदर भी आप देखते हैं बहुत बारी जो इंटरप्रिटेशन दिए होते हैं वो भागवतम के इस रचना के अनुसार नहीं दिए होते हैं। तो उनको लगता है राम एक आदर्श पुत्र है, दशरथ एक पिता, खाली साधारण पिता है। लेकिन जो भागवत के टीकाकार हैं, जो भागवत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान रामचंद्र और दशरथ के बीच में क्या, दशरथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान रामचंद्र के पिता हैं, और कोई साधारण व्यक्ति भगवान का बाप नहीं बन सकता, देखिए है कि नहीं। ऐ थोड़ी है कोई टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी ऐरा गैरा अथू खैरा जो है भगवान का पिताजी बन गया। भगवान के शाश्वत जो संगी है वही भगवान के माता पिता बन सकते हैं। और दशरथ और राम के बीच में किस रस का आस्वादन हो रहा है, विप्रलंब का आस्वादन हो रहा है, विरह का आस्वादन हो रहा है, जो आस्वादन व्रज की गोपियां करती है जब भगवान श्री कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर लेते हैं तो भक्त उनसे जो विरह आस्वादन करते हैं वही विरह दशरथ और अयोध्यावासियों को होता है। और विरह के जो महाभाव की अंतिम स्टेज है वो क्या है, उसमें 10 स्टेज बताई जाती है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है मध्य लीला के अंदर। तो उसकी अंतिम स्टेज जानते हैं क्या है, मृत्यु। तो जो है जिसके अंदर व्यक्ति भौतिक देह के अंदर नहीं रहता, तो दशरथ की जो स्टेज है ये उस विरह के महाभाव की स्टेज है, जिसको लोग साधारण सोचते हैं कि देखो बेटे के विरह में पिताजी मर गया, है कि नहीं। जब भगवान रामचंद्र वाल्मीकि सीता देवी के विरह में वियोग करते हैं, वाल्मीकि रामायण में 10 अध्याय हैं, मतलब 10 अध्याय के अंदर केवल मतलब आधे गीता से भी ज्यादा आप सोचिए, है ना, उतना बड़ा केवल भगवान राम वृक्ष से पूछ रहे हैं, पत्थर से पूछ रहे हैं, पहाड़ से पूछ रहे हैं, आकाश से पूछ रहे हैं, नदी नालों से पूछ रहे हैं, पतंगों से, पशुओं से, सबसे पूछ रहे हैं। सीता को देखा क्या, सीता को देखा क्या, सीता के पास टाइम्स याद कर रहे हैं, सीता गुणगान कर रहे हैं। कोई साधारण स्त्री से मतलब साधारण व्यक्ति भी इतना काम लोलुप व्यक्ति भी हो, कोई स्त्री से बहुत आसक्त हो तो भी ऐसा नहीं करेगा, राइट कि नहीं। तो लोग सोच, कोई कंफ्यूज हो सकता है कि देखो, कोई शिक्षा ले सकता है कि भाई देखो भगवान रामचंद्र बता रहे हैं कि आदर्श पति को कैसा होना चाहिए, है कि नहीं। तो ठीक बात है, भगवान रामचंद्र को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण से नहीं दे रहे कि हर व्यक्ति को जो है इस प्रकार से स्त्री के प्रति आसक्त होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो है ना अलग अलग प्रकार के मॉरल इंस्ट्रक्शंस के लिए रामायण को यूज किया जाता है, जो वैष्णवों को प्रिय नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को, इस बात को, इस तथ्य को, कि जो इतिहासों को, जो इस प्रकार के इतिहास को जब सामाजिक इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज किया जाता है तो बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे साधारण देखिए, रामायण में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट कॉन्ट्राडिक्शन बोला जाता है, घर का भेदी किसके लिए बोल रहे हैं, ये विभीषण के लिए। तो विभीषण को एक पॉजिटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे किया या नेगेटिव, एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे किया। लेकिन जो वैष्णव है वो विभीषण को ग्लोरीफाई करते हैं ना, निंदा करते हैं, वो ग्लोरीफाई करते हैं। तो हमेशा अब क्या है, जब आप सोशल स्तर पर ले आते हैं तो हम भगवान या वैष्णवों के आचार्यों के दृष्टिकोण से रामायण को ना देखकर, भगवान की लीला को ना देख करके इस भौतिक जगत के चश्मे से उस लीला को देखते हैं, और ये बहुत बड़ा इससे अपराध होने के चांस है। जैसे विभीषण के बारे में बोला, कोई कैकई की निंदा नहीं करता। देखिए संसार के अंदर इतिहास में रामायण चाहे महाभारत तो है घर घर की कहानी बेसिकली। पहले 10-20 साल पहले एक सीरियल आता कहानी घर घर की, उसकी जगह वो सीरियल में रामायण और महाभारत दिखाना चाहिए। और लिटरली देखा जाए तो हर घर की यही कहानी है, गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु अतंत्रितः। हर घर के अंदर कूटनीति चल रही है, अधर्म चल रहा है, यू नो, सच बात है कि नहीं। तो अनादि काल से चाहे वो अयोध्या के अंदर हो, प्राणियों के अंदर हो, चाहे वो दो कजन भाइयों के अंदर हो, गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु, कि जो घर पारिवारिक जीवन है वो स्वाभाविक है ही कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु, दुख का तंत्र है बेसिकली, वहां कूटनीति होगी होगी। लेकिन कैकेयी के बारे में कितना वर्णन आता है, कोई खास वर्णन नहीं। कैकेयी निंदा कितने लोग करते हैं, केवल वैष्णव करते हैं, बाकी बाहर के लोग व्याख्यान ही नहीं करेंगे कैकेयी का, सच बात है कि नहीं। तो अब देखिए कितना ट्विस्ट है, जहां पे विलेन है, कैकेयी एक विलेन है बेसिकली, तो उसका तो कोई चर्चा नहीं करेगा। और जो विभीषण है वो वास्तविकता में क्या है, वो एक आइडियल हीरो है, जो कि जैसे गोपियां ब्रज को अपने घर वालों को छोड़कर कृष्ण की शरणागति में आ गई, ऐसे विभीषण ने सारे रिश्ते नाते छोड़ करके सब प्रकार के अत्याचार को अपमान को सहन करने के बाद भी, नेग्लेक्ट होने के बाद भी जो है रामचंद्र की सेवा में आ गए। और यहां नहीं कि वानरों सबने आलिंगन कर लिया उनका, सबने पहले शक किया, मतलब उनको रिक्रूट करने से पहले पूरी मैनेजमेंट इष्ट गोष्ठी हुई जिसको हेड किया भगवान राम ने, और सबसे पूछा, सुग्रीव से पूछा, अंगद से पूछा, हनुमान जी से बाद में पूछा, जामवंत इत्यादि से पूछा, नल नील से पूछा कि क्या करना चाहिए। कोई बोला राक्षस है, क्यों विश्वास कर रहे हो इस पे, इसको मार डालना चाहिए। दूसरा बोला नहीं, दूत को मारना नहीं चाहिए, बंदी बना के रख लेते हैं। तीसरा बोला लंका वापिस भेज देते हैं, और ऐसे ऐसे अलग अलग मत थे। तो हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी बोलते कि प्रभु आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। तो फिर अपना अनुभव बताते हैं, अभी तक तो पहले को विभीषण से मिला नहीं था, लेकिन हनुमान जी मिले थे, कब मिले थे, जब लंका में गए थे सीता को खोजने के लिए, तो एक ही घर था जहां राम 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 की आवाज आ रही थी। तो बोले मैं लंका में गया था, ये आपके महान भक्त हैं, उस असुर कुल के अंदर रहते हुए भी, और लंका में सबका घर जलाया था, एक विभीषण का घर नहीं जला था, केवल एक अशोक वाटिका और विभीषण का घर, इन दो को छोड़ के बाकी सब जला था, है ना। तो बोल रहे आपके महान भक्त हैं और इन पे विश्वास करना चाहिए। और हनुमान जी तो वैसे भी बोलचाल में भी बहुत एक्सपर्ट थे और किसी के रूपरेखा को समझने बहुत विद्वान थे। तो कह रहे कि इनके आप शैली से पता लगा सकते हैं कि आपके शरणागत हुए हैं। तब भगवान रामचंद्र के बहुत बड़ा उनको फिर अभिभीषण गुणगान करते हैं और क्या उनका टाइटल देते हैं उन्हें, लंकेश। तो हनुमान जी पूछते हैं प्रभु आपने तो लंका का राजा बना दिया। और भगवान एक और ऐलान भी करते हैं वहां पे, पद्म पुराण का फेमस श्लोक है, मैं श्लोक तो याद नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि कोई एक बार भी मुझे बोल दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं आप मेरे हो, इसके बाद वो व्यक्ति भूल जाए लेकिन मैं नहीं भूलता उसे। और आज अगर रावण भी मेरे शरणागत आ जाए, क्योंकि मेरा कर्तव्य है शरणागतों को शरण देना, ये मेरा धर्म है, तो रावण भी आ जाएगा तो शरण दूंगा। तो कोई बोला प्रभु आपने बोला रावण आपकी शरण में आ जाएगा, शरण दे दोगे इसको, तो आपने लंका विभीषण को लंका का राज्य दिया, तो रावण को क्या दोगे, बोले अयोध्या का राज्य दे दूंगा। तो भरत को क्या दोगे, तो बोले वैकुंठ का राज्य दे दूंगा। तो बोले आप कहां जाओगे, बोला मैं सबकी सेवा करूंगा। भगवान रामचंद्र का ये जो है वो जो भक्तों के साथ आस्वादन है उनका जो है वो ये है। लेकिन बहुत बारी रामायण को इस प्रकार से भौतिक दृष्टिकोण से जब देख लिया जाता है तो लोग फिर फॉल्ट फाइंडिंग करने लगते हैं उसके अंदर और उससे अपराध करते हैं। इसलिए वैष्णव दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रभुपाद जी एक तात्पर्य के अंत के अंदर सूचना देते हैं कि जो है वैष्णवों से रामायण को समय सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अब भगवान राम की शिक्षा क्या है, अब लोग बोलेंगे आदर्श राजा होना चाहिए, राम राज्य चाहिए, है ना, आदर्श पति होना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन वैष्णव दृष्टिकोण के अनुसार क्या शिक्षा है। तो ये पांचवा श्लोक है, मर्ता मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम् रक्षो वधायैव न केवलं विभोः कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्वात्स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। तो देखिए वो बता रहे मर्त्यावतारस्त्विहमर्त्य शिक्षणम् कि देखिए रावण को क्या वरदान था कि केवल उसका वध कौन कर सकते हैं, मनुष्य कर सकते हैं। इसीलिए भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। हनुमान जी कह रहे हैं कि मनुष्य रूप को धारण किया, कोई और भी रूप धारण कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि केवल मनुष्य और वानर को छोड़ के बाकी कोई आपको मार नहीं पाएगा। लेकिन फिर हनुमान जी कह रहे रक्षो वधायैव न केवलम विभो, केवल उस राक्षस राज रावण को वध करने के लिए तो भगवान को आना जरूरी नहीं था। तो उनका उद्देश्य केवल रावण को वध करना नहीं था, वे किस लिए आए थे, कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य, कि देखिए व्यसनानि ईश्वरस्य कि इतने दुख ईश्वर होते हुए भी भगवान रामचंद्र को दुख भोगने पड़े। क्यों दुख भोगने पड़े, स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि, क्यों, क्योंकि सीता के से वियोग के कारण। तो यहां तात् अनुवाद में लिखा है, वे तो मर्त्य प्राणियों को शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक समस्त भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है, वे स्वयं में पूर्ण है, उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है, अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते हैं। अब देखिए हनुमान जी वो व्यक्ति है जिसने सीता माता को खोजने के लिए जान लगा दिया था, राइट, पूरा वही खोज करके आए थे और वो कह रहे हैं क्या, मैं तो राम के सबसे क्लोज था, है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं भगवान रामचंद्र क्या है, उनको कोई दुख नहीं था सीता से वियोग का, कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता क्योंकि वे पूर्ण हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान चाहते तो रामचंद्र चाहते तो लाखों करोड़ों सीता उत्पन्न कर सकते थे, एक सीता के लिए इतना पश्चाताप करने की क्या आवश्यकता है, कोई है क्या आवश्यकता, नहीं। अब लोग बहुत सारे कारण देते हैं, है ना, आपके पास कई सारे रामनवमी मैसेज भी आए होंगे कि राम का अवतार इसलिए हुआ क्योंकि नारद मुनि ने श्राप दिया था विश्व मोहिनी के विरह के कारण, वो सब बहुत ही बाह्य और मटेरियल कारण है। लेकिन आंतरिक प्रसंग जो वैष्णव दृष्टिकोण से क्या शिक्षा देना चाहते हैं भगवान, तो प्रभुपाद जी यहाँ तीन पैराग्राफ के अंदर तीन अलग अलग बातें करते हैं। पहली बात करते हैं यन्मय थुनादि गृहमेद सुखम तुच्छम कंडु यनेन करयो रिव दुख दुखम, कि देखिए दाम्पत्य जीवन यौन जीवन, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो हमेशा दुख का कारण है। भक्तों को तथा सारे मानव समाज को यह शिक्षा देने के लिए कि श्री रामचंद्र ने भगवान होते हुए भी नाना प्रकार के कष्टों को सहा। क्यों सहा? क्योंकि गृहस्थ जीवन जो है उसमें संभोग की छूट और पुनः पुनः लोग इंद्रिय सुख भोगते हैं, यद्यपि इंद्रिय सुख के पश्चात उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो निस्संदेह उन्होंने सारे कष्ट इसलिए झेले कि हमें शिक्षा मिले। वास्तव में उनके द्वारा पश्चाताप करने का कोई प्रयोजन नहीं था। तो देखिए, भगवान रामचंद्र ही शिक्षा देने के लिए कि गृहस्थ जीवन में या विषय सुख के या पत्नी के जो केंद्रित अगर कोई जीवन है तो हमेशा दुख का कारण ही बनेगा, ये शिक्षा देने के लिए। तो अब अगर ऐसा कोई शिक्षा सुनते हैं तो गृहस्थ भक्त तो बहुत डिप्रेस हो सकता है कोई, कि भाई अब क्या करें, है ना, हमें क्या करना चाहिए। प्रभुपाद अगले पैराग्राफ के अंदर प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान रामचंद्र की शिक्षाओं का जो दूसरा पहलू क्या है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एक जिम्मेदार पति होना चाहिए, ड्यूटीफुल हस्बैंड होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, एक बार पत्नी बना लेने के बाद मनुष्य को सत्यनिष्ठ होकर पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। यह है धर्म के अनुसार, इसलिए धर्म पत्नी बोला जाता है, या धर्म के अनुसार विवाह किया जाता है। ये आजकल के अनुसार नहीं कि दो साइन कर दिए विवाह हो गया, दो साइन कर दिया डिवोर्स हो गया, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। धर्म के नीति नियम के अनुसार विवाह होता है, और पूरे वैदिक सभ्यता के अंदर कोई श्लोक नहीं है कि रिवर्स मंत्र का कोई श्लोक हो, रिवर्स फेरे लगाएं पत्नी पत्नी और तलाक हो गया, ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है, है ना। केवल दो ही दृष्टिकोण के अंदर पति पत्नी सेपरेट हो सकते हैं, कब, एक जब पति संन्यास ले ले, या दूसरा पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, सिर्फ दो ही केस में सेपरेट हो सकते हैं, तीसरा कोई रीजन ही नहीं है जिसके लिए वो सेपरेट हो। तो भगवान रामचंद्र सिखा रहे हैं कि देखिए, पत्नी के साथ रहते हुए कितना भी कष्ट क्यों ना आए, फिर भी एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति पति होना चाहिए। भगवान रामचंद्र अपने चरित्र से इन दोनों प्रकार के लोगों को बताना चाहते थे। कौन कौन? दो प्रकार के मनुष्य, जो धार्मिक नियमों का निष्ठा से पालन करते हैं, और दूसरे हैं जो भक्त हैं, अर्थात जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के फॉलोवर हैं, और चाहे परो धर्म, दोनों को रामचंद्र बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए प्रिय तथा कर्तव्य निष्ठ पति बनाया जा सकता है। धार्मिक नियमों का पालन करने वालों को चाहिए कि वे अपनी पत्नी की रक्षा करने में उपेक्षा ना बरतें। हो सकता है कि ऐसा करने में कुछ कष्ट उठाने पड़े, किंतु पति को इन्हें सहना ही चाहिए, सत्यनिष्ठ पति का यही कर्तव्य है, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामचंद्र भगवान की शिक्षाएं, जिन लोगों ने विवाह नहीं किया है और विवाह की इच्छा नहीं है, उनके लिए क्या शिक्षा है, बहुत सिंपल है, पिछला पैराग्राफ उनके लिए था, राइट, कि मत पढ़िए चक्कर के अंदर, अगर रह सकते हैं तो बेस्ट है। और दूसरा पैराग्राफ किसके लिए है, जो विवाह कर चुके हैं या विवाह करने वाले हैं। बोले कोई बात नहीं, कष्ट सहन करने में हमको मजा आता है, जीवन में कोई चुनौती आएगी तभी तो आनंद है, बिना चुनौती के जीवन ही क्या है। तो ठीक है, कभी सुख कभी दुख आपको लेना है तो ठीक है। उन लोगों के लिए दूसरा पैराग्राफ है कि फिर जिम्मेदार बनो, ये नहीं कि भाई अब एक बारी विवाह कर लिया बाद में पता लगा ओहो बच्चों की जिम्मेदारी आने वाली है, इतनी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी नहीं चाहिए, है कि नहीं। इंद्रिय तृप्ति तो सबको चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तो ये रामचंद्र की ये शिक्षा है, ये नहीं कि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाए, और गृहस्थ जीवन में आदमी किस लिए जाता है, संतान उत्पत्ति के लिए, है कि नहीं। नहीं नहीं प्रभु जी प्लीज आप बंद कर लीजिए इनको ना, तो संतान उत्पत्ति, और फिर व्यक्ति बोले कि नहीं नहीं यौन जीवन का सुख तो भोगना है लेकिन संतान नहीं चाहिए। क्यों? संतान को बड़ा करने में अरे बड़ा कष्ट है, पालने पोसने के अंदर वो बड़ा कष्ट है। नहीं, गृहस्थ जीवन मतलब जिम्मेदारी। अब बोले नहीं नहीं, फिर लोग सोचते हैं आपको कोई भक्त भी बन जाता है तो कई बार आप सब भक्तों का भी अनुभव होगा, और हमारा भी व्यक्तिगत तो दो चार ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन कई सीनियर ड्यूटी सुना है, कई लोग आते हैं प्रभु जी हम भी आपकी तरह विरक्त होना चाहते हैं। अरे भाई अभी एज गया, अभी आपका जिम्मेदारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अभी गृह नहीं नहीं पूछे, घर में बहुत कष्ट है तो भोगी है कि नहीं, और जिम्मेदार बनिए, चाहे कष्ट हो चाहे नहीं हो, ये प्री मेच्योर रिनंसिएशन इज नॉट गुड, है कि नहीं। तो लेकिन फिर उसके बाद में बोलो 50 के बाद में आओ वानप्रस्थ लो, नहीं नहीं प्रभु जी अभी बहुत जिम्मेदारी है। तो आदमी के रिनंसिएशन का या वैराग्य का एक ही कसौटी होती है, मुझे कितना दुख और मुझे कितना सुख। वो भागवतम का लक्ष्य ही नहीं है, वह केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता और कर्तव्य निष्ठा। तो ये भगवान रामचंद्र के जो शिक्षा जो है दोनों प्रकार के लोगों के लिए। अच्छा, तो क्या भगवान रामचंद्र ने विवाह करके गलती की या फिर सीता का वियोग सहन करके दुख हुआ उन्हें? प्रॉपर तीसरे पैराग्राफ के अंदर तीसरा दृष्टिकोण कहते हैं कि भगवान रामचंद्र की शिक्षाओं का तीसरा पहलू क्या है कि देखिए, भगवान विष्णु या उनके भक्तों को सांसारिक यातनाएं कितनी भी झेलनी पड़े लेकिन उनको कोई परेशानी होती ही नहीं है। यत देख वैष्णवेरा व्यवहार दुख निश्चय जानी हता परमानंद सुख। चैतन्य भागवत ने बोला है कि देखिए, भक्ति मग्न रहने के कारण क्या है, एक वैष्णव हमेशा भक्ति का दिव्य आनंद उठाता है। जब वो आनंद में रहता है तो भगवान नहीं उठाएंगे। तो बाहर से जो विरह का जो जो है बहुत पेनफुल लग सकता है। ऐसा उद्धव जी को जब ब्रज में जाना था तो बोले, मैं कैसे यशोदा माई नंद महाराज का घर पहचानूंगा? तो बोले, देखो ब्रज में एक नदी है, उसका नाम क्या है? जमुना। और एक दूसरी नदी बह रही है, उस नदी के सोर्स में आप जाना तो वो जिस घर से निकल रही होगी वो घर है यशोदा माता और नंद महाराज का घर। वो नदी क्या है? निरंतर यशोदा माता और जो नंद महाराज हैं वो अश्रु प्रवाह कर रहे हैं कृष्ण के विरह के अंदर। तो बाहर से तो बहुत लगे कितना यातनाएं हैं। इनफैक्ट जब उद्धव जी आए थे राधा रानी को देखा तो उनका वर्णन बता रहे हैं कि राधा रानी की क्या बोलते हैं जो हाथ में पहनते ना इधर चूड़ी, चूड़ी बोलते ना, तो उन्होंने बोला कि उनकी कलाई इतनी छोटी हो चुकी है कि उनकी कलाई से चूड़ी तो छोड़िए, चूड़ी से तो पूरा शरीर निकल जाएगा और उनकी अंगूठी से पूरी कलाई निकल जाएगी, है ना। ऐसा उनका राधा रानी का विरह में ऐसा मतलब शरीर हो चुका है। तो अब दिखने में तो ये बहुत ही वेदनापूर्ण लगता है लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रेमी तथा प्रेमिका का भले ही वियोग कष्टकर लगता हो किंतु वास्तव में यह होता है अत्यंत आनंददायक। अतः सीता देवी से भगवान रामचंद्र का वियोग और उसके बाद उनके द्वारा भोगे जाने वाली यातनाएं एक प्रकार से उनके दिव्य सुख को प्रकट करने वाली हैं। और सब जानते हैं किसका मत हो सकता है, ये विष्णुचक्र ठाकुर का, है ना। विष्णु ठाकुर रसिक आचार्य हैं तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो है रामचंद्र और सीता देवी के बीच में जो विरह है ये क्या है, ये अत्यंत विप्रलब का दिव्य आनंद है, है कि नहीं। तो फिर भी भगवान रामचंद्र की यह शिक्षा है मृत्यु लोक के लोगों के लिए। अब हनुमान जी आगे कह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र बहुत विरक्त हैं और भगवान रामचंद्र बहुत आसक्त भी हैं, है ना। तो किससे विरक्त और किससे आसक्त हैं? न वै स आत्मात्मवताम सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान वासुदेवः न स्त्रीकृतं कश्मलम् अश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। तो कह रहे हैं कि देखिए, भगवान जो है इस भौतिक जगत से किसी प्रकार का लगाव न होने के कारण भगवान क्या विरक्त कहलाते हैं। उनका भौतिक इस परिस्थिति कोई लगाव नहीं है किसी के द्वारा भी, उनका लगाव तो वैकुंठ जगत और वहां की जीवात्माओं से है। तो यहां पे किस प्रश्न का उत्तर देने हैं हनुमान जी, एक और आक्षेप लोगों पे लगाते हैं। लास्ट ईयर हमने एक वीडियो भी रिलीज किया था कि देखिए, भगवान रामचंद्र ने सीता का परित्याग कर दिया, राइट, है ना। अब बहुत सारे राम भक्त इस प्रसंग को मानते ही नहीं है, है ना। उनकी ये भावना रहती है, मैं खुद भी ऐसे दो चार राम भक्तों से मिला हूं तो जो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि राम कभी सीता का त्याग कर दें। वो तो मजबूरी थी, अलग बात है जब रावण हर के लेके गया, लेकिन ये जो प्रसंग है कि सीता देवी का राम ने कब त्याग कर दिया था, धोबी के कहने पे, तो जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस भक्त ने बताया, रामचरितमानस में ऐसा वर्णन नहीं आता है शायद इस प्रसंग का। तो कह रहे, ऐसा हो कह सकता है कि राम सीता का त्याग कर दें, और बाद में वर्णन आता है कि राम ने लक्ष्मण का भी त्याग कर दिया, राइट। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो कह रहे हैं। हनुमान जी इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि देखिए, भगवान इस भौतिक जगत में किसी से लिप्त नहीं है। सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान वासुदेवः न स्त्री कृतम कश्मलम अश्नुवीत। कि जो है भगवान रामचंद्र सीता के वियोग के द्वारा किसी का परित्याग करना भगवान के लिए असंभव था। क्यों असंभव था? ठीक है, मान लिया भगवान विरक्त हैं, लेकिन भगवान विरक्त किससे हैं? भौतिक भौतिक जगत से विरक्त हैं, परिपूर्ण पूरी तरीके से विरक्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्या है? सक्त, आसक्त है। आत्मा आत्मवताम सुहृत्तम, किससे आसक्त हैं भगवान? वे भगवान सभी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से बहुत आसक्त हैं। मतलब भौतिक जगत से विरक्त हैं, आध्यात्मिक जगत से क्या है भगवान? बहुत आसक्त हैं, अटैच्ड हैं। तो सीता और लक्ष्मण तो भौतिक जगत के हैं ना, आध्यात्मिक जगत के हैं? आध्यात्मिक जगत के हैं, तो उनसे तो विरक्ति का सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान राम सीता और लक्ष्मण कभी परित्याग करें, लेकिन फिर भी किया उन्होंने। क्या कैसे किया और कैसे नहीं किया, तो इसी इस श्लोक के अंदर यही दो पहलू भगवान रामचंद्र के ऊपर आते हैं, जो हमने लिखा है धर्म और प्रेम। पिछले श्लोक में लिखा था एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने क्या स्थापित किया? धर्म। कि देखिए कहीं पे भाई का प्रेम या पत्नी का प्रेम भी आए तो राजा को अपना राजधर्म निभाना चाहिए, कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए। अलग अलग धर्मों के बीच में, कर्तव्यों के बीच में जब स्पर्धा हो तो नेचुरली आपको एक हायर धर्म चूज करना पड़ता है, है कि नहीं? ये नीति शास्त्र है बेसिकली। तो चाणक्य नीति के अंदर श्लोक आता है कि, या सुभाषित आने के अंदर, कि गांव के लिए परिवार के लिए एक को छोड़ देना चाहिए, गांव के लिए परिवार को छोड़ देना चाहिए, और एक शहर के लिए पूरे गांव को छोड़ देना चाहिए, और चौथा क्या है? देश के लिए पूरे राज्य को छोड़ देना चाहिए। ऐसा नीति शास्त्र भी है। तो उसी प्रकार से समटाइम वी हैव टू ब्रेक अ लेसर प्रिंसिपल फॉर अ हायर प्रिंसिपल या हायर कॉज। तो ऐसे ही, लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं कि पति धर्म या भ्रातृ धर्म को त्याग दिया और राजधर्म को फॉलो कर रहे हैं, नहीं। एक जगह तो राजधर्म है और दूसरी तरफ भगवान का क्या है? प्रेम। किसके साथ प्रेम है? सीता देवी और लक्ष्मण के द्वारा। इसीलिए उस प्रेम की पराकाष्ठा कहां पे है? विप्रलंब भाव के अंदर। ये विष्णु ठाकुर का मत है। इसीलिए भगवान रामचंद्र जो है, हनुमान जी यही कह रहे हैं कि वास्तविकता में तो कभी सीता और लक्ष्मण का उन्होंने परित्याग नहीं किया। इनफैक्ट विप्रलंब भाव के अंदर, विरह के भाव में तो और घनिष्ठ संबंध हो जाता है कि नहीं? तो इस प्रकार न लक्ष्मणम चापि, भगवान के लिए असंभव है कि वो सीता और लक्ष्मण को कभी त्याग कर सकें, क्योंकि वे इनसे बहुत आसक्त हैं, राइट? अब ये अगले दो श्लोक सुग्रीव जी की प्रार्थना है और ये बहुत शिक्षाप्रद है, जल्दी मैं इसको विराम देता हूं। तो दोनों ही श्लोक आप हमारे साथ में एक साथ दोहराइए। न जन्मनु न महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर न कृतिस्तोष हेतु तैर्य द्विसृष्टा नपि नो वनौकसः चकार सखे बत लक्ष्मणाग्रजः सुरो सुरो वाप्यथवा नरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम् भजेत राम मनुजा कृतिम हरिम य उत्तरा ननयत कौसलान दिवम इति। इसमें सुग्रीव कह रहे हैं कि देखिए भगवान किससे इंप्रेस नहीं होते हैं, है ना? अब भगवान विरक्त हैं भौतिक जगत से, भगवान आसक्त हैं आध्यात्मिक जगत से और सभी साधुओं से और भक्तों से। तो भगवान को यदि आपने आकृष्ट करना है तो क्या क्वालिटी चाहिए आपको? क्या जन्म चाहिए उच्च कुल में? तो सुग्रीव कह रहे नहीं। तो न क्या सौभाग्य चाहिए, शारीरिक सौंदर्य चाहिए, वाक चातुर्य चाहिए, बुद्धि चाहिए? तो कह रहे हैं कि नहीं, न जन्म चाहिए, न सौभगम, सौभगम मतलब सौभाग्य, तो और न वांग मतलब वाक शक्ति, बुद्धि मतलब बुद्धि, आकृति मतलब रूप, तो ये सब नहीं चाहिए भगवान को जो है। भगवान इन गुणों की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान इससे बिल्कुल इंप्रेस नहीं होते हैं। हम में से कोई सोचे कि नहीं हमारे बैंक बैलेंस से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, और या कोई हमारे सौंदर्य से, या कोई बहुत सुंदर गाता है या बहुत सुंदर है, या उसके अंदर अनेक 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 प्रकार के कौशल हैं, तो हनुमान जी कह रहे हैं हरे कृष्णा, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। सुग्रीव जी भी कह रहे हैं इसका क्या प्रमाण है, कोई बोल सकता है प्रमाण क्या है? तये द्विसृष्टा नपिनो वनौकसः, हम लोग क्या है? जंगल के वासी हैं, बंदर हैं, ना बुद्धि है, ना बोलना चालना आता है, ना बंदर कभी आपको लगता है उसका मिस और मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट होने वाला है कोई बंदर? कोई और कोई ज्यादा पालता भी नहीं है बंदर की, हाँ सुंदर है, बड़ा कुछ है, हाँ। इनफैक्ट बंदरों का कॉन्टेस्ट तो अगली कॉन्टेस्ट होना चाहिए कुछ, है ना? लाइक दैट। तो जो है उच्च कुल में कोई बंदर को कोई उच्च जानवर भी नहीं मानता। चलो वैदिक के अनुसार गाय को मानते थे, आज के अनुसार कुत्ते को मानते होंगे, लेकिन बंदर को कभी देखा है आपने? कभी सुना हो बंदर कहने, कभी ज्यादा नहीं सुना, बंदर को से सोते हैं मदारी के लिए, सर्कस के लिए, नौटंकी करने के लिए बंदर को गिना जाता है। तो सुग्रीव जी कह रहे हैं हम असभ्य वनवासियों को उच्च कुल रूप रंग न होते हुए कोई बात करते हैं भगवान ने क्या बनाया, अपना मित्र बनाया है। ये देखिए भगवान की महानता है। तो सुग्रीव कह रहे हैं क्या था जो भगवान ने हमारे अंदर देख लिया, आखिर क्या ऐसी क्वालिटी है जो भगवान राम को आकर्षित करती है। तो कह रहे हैं सुरो सुरो बाप यथ वानरो नरह। आप सुर हो चाहे असुर हो, आप वानर समझते हैं, वानर मतलब क्या होता है, वानर, नर मतलब नर जैसा, है ना, इसीलिए डार्विन थ्योरी शायद यहीं से चालू हो गई पता नहीं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, वानर अपनी जगह है, नर अपनी जगह है, ऐसा नहीं है कि वानर बाद में नर बन गया, वानर वानर था नर था। तो कह रहे वानर हो चाहे नर हो, सर्वात्मना यह सुकृतज्ञ उत्तमम, प्रत्येक प्राणी को पूरे हृदय से सर्वात्मना यह, उन्हें क्या करना चाहिए, भगवान रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए। ओहो एक चीज मैं भूल गया, प्रभुपाद तात्पर्य बड़ा सुंदर कोट करते हैं, ये इस तात्पर्य पिछले तात्पर्य के अंदर कह रहे कि देखिए श्री चैत भगवान रामचंद्र कलयुग में किस रूप में आए हैं, श्री चैतन्य के रूप में आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे, और थे क्या, बिल्कुल फकीर, इतने फकीर कि उनके पास बर्तन भी नहीं थे, एक बस टूटा हुआ घड़ा था उनके पास में, कौन थे, कोला बेचा श्रीधर। लेकिन उसको चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि ब्रह्मा शिव इत्यादि भी उनके सौभाग्य के गुणगान करते हैं। ना वो सुंदर थे, ना चतुर थे वाणी के अंदर, ना कोई धन था कुछ था, एक बर्तन तक नहीं था उनके पास में। अब सोचिए कोला बेचा सेवा केरा देख भाग्य सीमा, ब्रह्मा सेवा कांदे जा रहा देखी या महिमा, धने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाए, केवल भक्ति रवश चैतन्य गोसाई। तो कह रहे खोला बेचा सेवा करो देख भाग्य सीमा, क्या सीमा उनके देख की, जब चांद काजी के यहाँ चैतन्य महाप्रभु जा करके आए और रिटर्न में आते उन्होंने क्या किया, खोला बेचा श्रीधर के आंगन में आए और वहां के उन्होंने क्या किया, उस श्रीधर के आंगन से उस जंग लगे हुए पुराने घड़े से जिसको कोई चोर भी ना उठाए, मतलब चोर भी लेके जाएगा तो बोलेगा यार ये व्यक्ति तो इतना गरीब है और इतना बेकार पात्र, कबाड़ी भी नहीं लेगा, मतलब ऐसा है, तो बोले इस व्यक्ति को तो मैं कुछ दान में, एक बर्तन में जो चुरा चोरी का बर्तन मैं दान में दे जाता हूं, ऐसा बर्तन इस्तेमाल कर रहा है। उस पॉट से चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, पानी पिया, जल पिया, ये दिखाने के लिए कि देखिए श्रीधर कोला बेचा मुझे कितने प्रिय हैं। और उनके इस महिम, उनके इस सौभाग्य को देखकर क्या है, ब्रह्मा शिव इत्यादि क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा शिव कांदे जा रहा देखी या महिमा, वो लोग रो रहे हैं शिव जी और ब्रह्मा जी के, ऐसा सौभाग्य तो हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा तो शिव जी को महाप्रसाद पाने के लिए कितना टेंशन लेना पड़ा, है कि नहीं, पार्वती को कितना टेंशन लेना पड़ा, लेकिन कोला बेचा श्रीधर को वही चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने खुद आकर के उसके आंगन में पानी पी रहे हैं। इसीलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं धने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाए, धन से फॉलोवर से कितने चेले हैं आप, कितने विद्वान हो, इससे कृष्ण नहीं प्राप्त होते हैं, केवल भक्ति रवश चैतन्य गोसाई। चैतन्य महाप्रभु किससे प्रसन्न होते हैं, केवल और केवल भक्ति से, श्री रामचंद्र केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और वही सुग्रीव यहाँ पे कह रहे हैं ये सब किम पुरुष लोक के वासी, सर्वात्मनाय सुकृतज्ञ उत्तमम, कि सबको भगवान रामचंद्र की उपासना करनी चाहिए। भजेत राम मनुजा कृतिम हरिम, कृतिम हरिम, कि उन राम की जो मनुष्य आकृति के रूप में आए लेकिन है भगवान हरि, और जो पूरे कौशल वासियों को, अयोध्या वासियों को कहां ले गए अपने साथ में, वैकुंठ धाम वापिस ले गए, उन भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, यह सुकृतज्ञ उत्तमम, क्योंकि भगवान की पूजा करने के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, भगवान इतने महान हैं, किसी की आप सुर हो असुर हो नर हो वानर हो, आपकी तुच्छ से तुच्छ सेवा कोई भगवान स्वीकार करते हैं। ये भगवान की महानता है कि कोई भक्ति से थोड़ा भी सेवा करे भगवान की, भगवान क्या हो जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं। और ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य के अंदर, भगवान श्री रामचंद्र अपने भक्ति के, अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं कि वे किसी के द्वारा चाहे मनुष्य या कुछ और थोड़ी भी सेवा किए जाने पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। इसे क्या प्रमाण है, प्रमाण देखिए, सब वानर पुल बना रहे थे, बड़े बड़े पर्वत पत्थर उठा के लेके आ रहे थे, आसपास के पत्थर समाप्त हो गए तो क्या लेके आ रहे थे, पूरे पूरे पहाड़ उठा उठा के लेकर के आ रहे थे पुल बनाने के लिए, भयंकर सेवा चल रही थी क्योंकि उनके अंदर बहुत बल था। एक गिलहरी बोली कि देखो रामचंद्र की सेवा पुल, मैं भी सेवा में कुछ कंट्रीब्यूट करूं, आहुति डालूं यज्ञ के अंदर। लेकिन गिलहरी क्या उठाएगी, है ना। तो कुछ रेत के दाने लेकर के आ रहे थे, इतने लंबे पुल में रेत के दानों से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो हनुमान जी आ रहे, ए गिलहरी हट, अभी हमारे पैरों में जाके मर जाएगी, साइड हटो। तो राम जी ने क्या बोला, राम ने बोला कि नहीं, जितना एंडेवर मेरी दृष्टि में तुम कर रहे हो उतना ही ये कर रही है, क्योंकि उसकी इतनी क्षमता है। भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन है, मैं तो भावना देखता हूं। तो पुल मेरे लिए क्या समुद्र पार करना मुश्किल है क्या, अब सोचिए भगवान के लिए मुश्किल था समुद्र पार करना किसी प्रकार से, नहीं ना। लेकिन भगवान ने क्यों किया, इससे भगवान का शौर्य का बखान हुआ और भगवान की महिमा बढ़ी। तो भगवान कह रहे मेरे लिए ये महत्व नहीं है कौन कितनी सेवा कर रहा है कितनी नहीं कर रहा है, महत्वपूर्ण क्या है, सेवा की भावना महत्वपूर्ण है। तो ये प्रमाण है कि भगवान कोई गिलहरी सेवा कर रही है, आप सोचिए, तो हम तो ज्यादा ही सेवा कर सकते हैं ना, कि नहीं, राइट। तो इसीलिए वो हनुमान जी सबको, सब किम पुरुष लोक के वासी कह रहे हैं कि हम सबको उन भगवान के समय तत्पर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सबने इस दुनिया में बहुत सारे मालिकों की सेवा की है, बॉस की सेवा की है, अपने माता पिता की सेवा की है, पति ने पत्नी की है, पत्नी ने पति की है, बच्चों की सेवा की है, और एंड में क्या परिणाम मिलता है, मालिक जिस दिन ठीक सेवा नहीं करोगे क्या करेगा, फायर कर देगा आपको, राइट। सच बात है कि नहीं, आप जाते रहिए लेबर कोर्ट में जाते रहिए, मालिक भी जाता रहेगा, लड़ते रहिए, और क्या होगा, लड़ाई होती रहेगी, बोलेगा मेरा ये फंड नहीं दिया वो नहीं दिया बस, राइट। एक दिन सेवा नहीं करेंगे ठीक से तो भूल जाता है आदमी की पुराना है। पति पत्नी हमेशा विवाह के अंत में लोग क्या बोलेंगे, आपने हमारे लिए किया ही क्या, गलती कर दी आपसे विवाह करके, राइट, जीवन बर्बाद हो गया, ऐसा ऑफकोर्स कहने के लिए मतलब नॉर्मल डायलॉग होगा। और आजकल बच्चे तो स्वाभाविक है, सब अपने माता पिता क्या कहते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया, राइट। कितना भी आप कीजिए दुनिया के अंदर, किसी के लिए भी कीजिए, अंतिम परिणाम यही होता है, आपने कम किया हमारे लिए, ज्यादा करना चाहिए था, या ठीक नहीं किया हमारे साथ में, राइट, भौतिक जगत के अंदर। लेकिन भगवान की सेवा कोई करता है तो भगवान कभी ये नहीं देखते आपने क्या नहीं किया, भगवान हमेशा ये देखते हैं आपने क्या किया। और ना भगवान की मेमोरी लॉस होता है, भगवान को भूलते हैं, और ना भगवान एहसान फरामोश है कि नहीं, भगवान हमेशा याद रखते हैं किस भक्त ने किस समय किस परिस्थिति में क्या सेवा की थी। तो इसीलिए जो रामनवमी एक बहुत सुंदर अवसर है कि हम सब अपने आप को डेडिकेट करें भगवान की सेवा के लिए, वही श्री रामचंद्र चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और हनुमान जी जैसे उनके कौन सेवक हैं, श्रील प्रभुपाद। कैसे, हनुमान जी ने पूरा समुद्र पार करके लंका को जलाया, सीता माता को खोज करके लेके आए, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सब समुद्र पार कर, श्री शिला प्रभुपाद समुद्र पार करके कहाँ गए, पाश्चात्य जगत के अंदर गए, और वहां से सारी भूली भटकी आत्माओं को पकड़ करके भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरण में लेकर के आए, है कि नहीं। तो अगर हम देखें तो उसके अंदर बहुत सिमिलैरिटीज हैं कि अब देखने को तो हनुमान जी ने सीता का खोज किया, लंका को जला करके आ गए, बाद में रथ नहीं था, लक्ष्मण को अपने कंधे पे बैठा करके लेके गए, सब वानरों ने भी सेवा की। जब अयोध्या पहुंच जाते हैं, जानते हैं, तो भगवान रामचंद्र सीता जब राज्याभिषेक हो जाता है तो सभी वानरों को लाइन लगाते हैं और सबको रिवॉर्ड देते हैं, भगवान सबको धन्यवाद देते हैं जिसने जो सेवा की होती है। तो राम और सीता बैठे होते हैं और एक एक वानर का व्यक्तिगत रूप से उनको धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, और उस लाइन के अंत में जानते हैं कौन होता है, हनुमान जी। टेक्निकली फर्स्ट होना चाहिए था ना उन्हें कि देखो सबसे ज्यादा सेवा मैंने की, लेकिन फिर भी हनुमान जी इतने नम्र हैं, सबसे एंड में उस लाइन के खड़े होते हैं। अब कई करोड़ों बानर होते हैं, एक एक का धन्यवाद देते हैं भगवान रामचंद्र और सीता। फिर हनुमान जी जब आते हैं तो भगवान रामचंद्र जानते हैं क्या कहते हैं उन्हें, भगवान राम और भगवान कहते हैं उन्हें, उनका आभार प्रकट कहते हैं करते हैं, कहते हैं कि हनुमान जी आपने जितनी मेरी सेवा की है उतना तो मेरा कोई अपना परिवार वाला भी ना करे। कैसे नहीं करे कि देखो आपने सबसे पहले सीता का खोज करके मेरे प्राण नहीं, सीता को मेरा पता दे करके उसके प्राण बचाए, राइट। लंका गए और राम का संदेश दिया तो सीता माता ने रावण को बोल दिया 2 महीना और, मतलब ऐसा रावण ने बोला था, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा, ऐसा कुछ था। तो और सीता ने भी हनुमान जी को बोला था, राम को बोलिए कुछ तो 1 महीना ऐसा कुछ पीरियड टाइम पीरियड दिया था कि नहीं आए मुझे नहीं लेकर के गए तो मैं अपना प्राण त्याग आत्महत्या कर लूंगी। तो बोले आपने सीता का प्राण बचाया, सीता का संदेश मुझे दे करके मेरे प्राण बचाए, राइट। और युद्ध के दौरान संजीवनी बूटी ला करके आपने लक्ष्मण के प्राण बचाए। और क्या हुआ था, भरत ने मुझे बोला था कि 14 साल समाप्त होने के एक दिन भी लेट हो गया दी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब हुआ क्या, जब राम और सीता मिले, सीता माता ने बोला कि भाई अब जितने ऋषि मुनियों के आश्रम में रुके थे उन सबसे मिलते हुए धन्यवाद देते हुए फिर थोड़ी वनवास के को श्राप मिलेगा, है ना, तो वन में आना दोबारा हो ना हो उन सबको मैं धन्यवाद मिलकर चला दे। तो लेट हो गया थोड़ा, अब भगवान को टेंशन आ रही थी भाई अब भरत सुसाइड कर लेगा। इधर सीता, तो हनुमान जी को भेजा उधर कि जाओ भरत को संदेश दो आत्महत्या ना कर ले। तो भरत को बोला भगवान आ रहे हैं, यू नो होल्ड योर लाइफ ब्रेथ, ऐसा है प्राण वायु बचा के रखो अपने। तो बोले आपने भरत की रक्षा की और हम सब की रक्षा करके आपने सारे अयोध्या वासियों की रक्षा की, यदि मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसके द्वारा मैं आपके ऋण को चुका सकूं, राइट। भगवान ऐसा बोलते हैं और क्या कहते हैं उन्हें, कहते हैं मेरे पास सिर्फ एक ही वस्तु है, अपना आलिंगन, यदि मैं ही आपको दे सकता हूं ये खाली। और भगवान रामचंद्र जो है हनुमान जी का आलिंगन करते हैं। तो मैं कई बार जब भी हनुमान जी के विषय में चर्चा करते हैं तो मैं यही कहता हूं कि देखिए श्रील प्रभुपाद ने जिस प्रकार से भगवान की सेवा की, भगवान को क्या बोल रहे होंगे, सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। कहना कृष्ण के पास, चैतन्य महाप्रभु के पास और कोई शब्द नहीं होगा श्रील प्रभुपाद को कहने के लिए, क्योंकि भक्ति सरस्वती ने दो आज्ञा दी उन्हें। क्या आज्ञा दी, कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो और whenever you get money print and distribute books, जब आपको धन मिले तो पुस्तकें बांटो और पुस्तकें छापो और पुस्तकें बांटो। एक था ये इस्कॉन और एक है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। आप सोचिए तीसरी आज्ञा देते तो किस पराकाष्ठा तक प्रभुपाद ने उसको किया जो है। तो और जो भी लोग उनको असिस्ट करेंगे, जितने वानर थे, चाहे मेन रोल में ना हो सकता है कोई कोई वानर सिर्फ इतना पत्थर उठा के दिया हो, छोटा छोटा पत्थर भी, बड़ा बड़ा भी ना उठा पाया हो, लेकिन राम सीता ने उन सबका धन्यवाद दिया। तो जितने भी भक्त लोग, चाहे एक किताब बांटे चाहे दो किताब बांटे, हम तो क्षमता अनुसार दीदी इस मिशन में आंदोलन में सेवा करने का प्रयास करेगा, तो भगवान रामचंद्र चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे, स्वयं बैठ कर धन्यवाद देंगे। क्यों, कि तुमने प्रभुपाद को असिस्ट किया है, राइट, तुमने प्रभुपाद को फॉलो किया है, तो इसीलिए उनको मिशन के अंदर आपने जो है सहायता किया है, भगवान ऋणी हो जाएंगे उस बात के। तो ये हमारा स्पेशल सौभाग्य है। अब देखिए हनुमान जी ने इतना सेवा किया, प्रभुपाद जी का जितना सेवा है सब अतिमानवीय है, सुपर ह्यूमन है। कैसे मैंने प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस पे भी इस बात को बोला था, कितने शिष्य बनाए प्रभुपाद ने 10-11 साल के अंदर, रजिस्टर्ड हैं लगभग 4,700 जितना काउंट है। तो 11 साल के अंदर कितने दिन होते हैं, लगभग 4,000-4,500 दिन होंगे, और कितने होंगे 365 × 11 करेंगे तो 4,000 दिन होंगे। मतलब रोज प्रभुपाद जी ने एक शिष्य बनाया एवरेज, राइट। प्रभुपाद जी ने जो है इसके बाद में कितने मंदिर खोले, 108, कितने साल में, 10-11 साल के अंदर, तो लगभग हर महीने एक मंदिर खोला, राइट। आप ये सोचिए हर महीने एक मंदिर खोला, हर रोज एक शिष्य बनाया, कितने पेज रोज लिखे प्रभुपाद जी ने, तो किसी भक्त ने कंबाल के बोलते लगभग 6 पेजों का अनुवाद प्रभुपाद ने एवरेज डेली किया, इतना शेक्सपियर ने भी नहीं लिखा, राइट। और उसके बाद में इतने लोगों को बुक्स लिखे, कितने प्रवचन दिए, लगभग रिकॉर्डेड 2000 प्रवचन है, लगभग 1900-2000 के आसपास रिकॉर्डेड प्रवचन है जो बिल्कुल जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसे लगभग 1000-1500 से ऊपर होगी उनके कन्वर्सेशंस और मॉर्निंग वॉक, कितने प्रेस इंटरव्यूज, कितने कंट्रीज के अंदर गए। मैं कहना कोई इंसान कर सकता है ये कार्य नहीं ना, अब हम देख सकते हैं हम इतने सारे लोग मिल करके एक मंदिर बनाने में, रोहिणी मंदिर बनाने में कितने साल हो गए हमको, ऑलमोस्ट 10 साल होने को आ गए जमीन खरीदने से लेके, और प्रयास तो चल रहा है कोई 20 सालों से, उसके पहले 10-15 साल तक जमीन इधर देखो उधर देखो। जब हमारा मंदिर यहाँ 2005 में शिफ्ट हुआ था तो बात राधिकरण को रोहिणी ले जाते हैं, तब एक 400 गज का छोटा प्लॉट मिल रहा था, ऐसे करके इतना लीला है उसके पीछे 20-25 साल बनाने में। और ये 108 मंदिर अधिकांश प्रभुपाद जी ने कहाँ बनाए, भारत में नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। आप सोचिए ना, तो ये तो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके ऊपर भगवान के साक्षात विशेष कृपा हो, शक्ति प्रदत्त हो कोई, जैसे हनुमान जी। वैसे तो पहले ही पता था भगवान ने, हनुमान जी ने पहले, हनुमान जी को पहले ही वो दे दी थी, आई थिंक अंगूठी था जो रामचंद्र ने दिया उनको कि ये सीता को दिखाना है ना, विवाह के समय शायद उनकी माता जी ने दिया था, सीता की माँ ने उनको दिया था। तो इसका मतलब क्या, भगवान राम ने डिसाइड तो पहले ही कर रखा था कि हनुमान ही खोजेंगे, लेकिन ये तो शायद भगवान ने भी नहीं सोचा होगा लंका जला के आएंगे, है ना, वो एक्स्ट्रा सर्विस थी उनकी, है ना, हम तो सोचे सेवा खत्म हो गई, चलो हाथ धो काम खत्म, हनुमान सोच रहे और सेवा कैसे करूं। तो वो तो गए थे कि ठीक है रावण के, उनका क्या आइडिया था, बोले इतनी दूर आ ही गया हूं जब, तो ये भी देख के जाता हूं कि लंका में रावण की शक्ति कैसी है, तो युद्ध करने में आना, युद्ध करने आना ही है तो आसानी होगी। तो इस दृष्टिकोण से वो देख रहे थे, पूरे रावण निरीक्षण किया, फिर देखा चलो इन असुरों का बल भी देख के जाते हैं, तो अशोक वाटिका को तोड़ना चालू कर दिया हनुमान जी ने, है ना। तो और रावण ने पूछा इतना क्यों संहार किया, बोले कुछ नहीं भूख लगी थी तो फल खा रहा था, सुना लंका के फल बहुत मीठे होते हैं, ये खाने के लिए जो है मैं बैठा था। हाँ, रावण के बेटे को, तो एक बेटे को मारा अक्ष कुमार को, और ये बेटा तो नहीं था, एक और राक्षस था जंबूमाली करके, उसका तो खैर मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सुंदर लीला है। वो जंबूमाली इतना शक्तिशाली था, रावण भी डरता था उससे, लेकिन जंबूमाली की एक बहुत बुरी हैबिट थी, वो क्या थी, हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। तो रावण ने उसके महल में एक स्विमिंग पूल बनाया था शराब का, है ना, तो सारा दिन उसी में डूबा रहे, क्योंकि जगह रहा ना तो जंबूमाली रावण के लिए भी खतरा हो सकता था, अगर मान लो होश में आ गया वो, तो इतना वो शक्तिशाली था। तो जब हनुमान जी आए तो रावण ने सोचा चलो ये अच्छा है, जंबूमाली उठा के भेज देते हैं यहाँ पे, तो जंबूमाली को भेज दिया। और रावण को 100% कॉन्फिडेंस था कि जंबूमाली को कोई परास्त कर ही नहीं सकता। तो जंबूमाली को बुलाया, जंबूमाली को पता था जब तक कोई स्पेशल टास्क नहीं होगा मेरे को बुलाया नहीं जाएगा, किस लिए बुलाया, तो बोला एक बंदर ऐसे ना अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, उसको बहुत गुस्सा आया रावण के ऊपर, चिल्लाने लगा रावण के ऊपर वहां पे, कह रहे एक बंदर के लिए मुझे पकड़ लेकर के आए। तो बोला नहीं साधारण नहीं है, फिर भी थोड़ा रावण ने चापलूसी करी भेजा, तो उसको बहुत इंसल्ट फील होता जंबू माली को। और फिर रावण ने एक और इंसल्ट कर, मतलब इंसल्ट कर दिया उसका, बोले ये ना कुछ 8,000 या 80,000 को सैनिक है राक्षस, इनको भी ले जाओ। बोले एक बंदर, उसके लिए तो मुझे उठाया और कह रहे सैनिक भी साथ ले जाओ। तो बड़ा तन के गया वहां पे, और हनुमान जी आराम से अब खोज रहे हनुमान जी को कहाँ है। तो अचानक तो और हनुमान जी पेड़ पे खा रहे थे, और जो गुठली वुठली होती है सब सैनिकों के मुंह पे मार रहे थे पेड़ के पीछे से, आराम से एकदम कैजुअल बैठे हुए थे, तो सबने देखा रहे पेड़ के पीछे बैठा है। तो राक्षस लोग अटैक करने लगे, तो हनुमान जी ने गदा से या कुछ तो ऐसे करके उनको मार दिया। फिर जंबूमाली अब सामने आया, उसको तो युद्ध करना था, तो हंसते हुए जोर से उसने आकार को बड़ा किया। जब आकार को बड़ा किया तो जंबू माली के घुटने तक हनुमान जी आए, मतलब हनुमान जी के आंखों के सामने उसका घुटना था। तो हनुमान जी ऐसे देख रहे हैं ऊपर, देखो ओ हो इतना बड़ा है। थोड़ी देर में जंबू माली जब सीधा देखा तो क्या देखा, उसकी आंखों के आगे पूरा अंधेरा छा गया। बोले ये क्या हुआ, तो ऐसे देखो सबको समझ नहीं आया, ऊपर देखा तो उसने देखा ये हनुमान जी का घुटना है जिसके आगे मैं खड़ा हूं। तो हनुमान जी ने एक थप्पड़ मारा उसको जंबू माली को, और वहीं खत्म हो गया। तो रावण इतना डर गया था ना जंबू माली के वध से, कि जंबू माली का कोई वध कर सके तो उसमें क्या शक्ति होगी। तो रावण बहुत ज्यादा एक्चुअली डर गया था। और हनुमान जी सीता देवी को बोल के आए थे, देखो मैं तो सबसे निकृष्ट वानर हूं अपनी सेना का, तो इसीलिए सबसे दूत के रूप में किसको भेजते हैं, जो किसी काम का नहीं होता, वेस्ट होता है ना, उसको सैनिक मैसेंजर के रूप में भेजते हैं, बाकी तो योद्धा होते हैं लड़ने के लिए भेजते हैं ना उन्हें, है कि नहीं, तो मैं तो वो हूं। ऐसे ही उसने बोला, देखो रावण को ललकारा पूरा, रावण की शक्ति को पूरा देख लिया उन्होंने, और फिर बोला कि रावण देखो मेरी बात मान लो, है ना, ये तो मेरे अकेले से इतना मैंने कर दिया, और मेरे से तो बढ़ के ही है जितने सैनिक हैं राम के समय, ऐसे करोड़ों करोड़ों हैं, तुम्हें लंका कहीं यूनिवर्स मतलब सृष्टि में बचेगी नहीं, ऐसा है। तो ऐसा रावण को इतना धमका दिया, रावण बहुत डर गया था एक्चुअली एक हनुमान जी को देख करके। तो एनीवे पूरा टॉपिक क्यों चालू हो गया, कि जो भी है भगवान रामचंद्र की सेवा, जो हनुमान जी की सेवा है, कि इतनी सेवा उन्होंने किया कि भगवान रामचंद्र कहते, जिस पर गोपियों के भगवान कह रहे न पा रही है हम, यू बी सेटिस्फाइड विद योर ओन लव एंड सर्विस एटीट्यूड, मेरे पास आपका ऋण चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार से भगवान हनुमान जी को कहते हैं। और वही रामचंद्र भगवान जो श्रील प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, इसलिए हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें प्रभुपाद की शरण ग्रहण प्राप्त हुई है, जो भगवान के निश्चित रूप से बहुत प्रिय हैं, है कि नहीं। तभी तो भक्तिसान सरस्वती ने जब बॉम्बे में प्रभुपाद जब गौड़िया मठ खुला, तो भक्तों ने बोला कि अभय बाबू को मठ का अध्यक्ष बना दीजिए, प्रेजिडेंट बना दीजिए। भक्तिसान सरस्वती ने क्या बोला, व्हेन टाइम विल कम ही विल डू एवरीथिंग अलोन, जब सही समय आएगा ये सब कार्य अपने आप अकेला करेगा, तो है कि नहीं। तो इसीलिए हमें सीखना चाहिए रामनवमी पे कि हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन में और अधिक दृढ़ हो सके। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामनवमी महा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। मैं एक चीज और भूल गया बस कहना, क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत समय लिया। मेरे को पहले भक्तों ने बोला था आप समय पे खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन रामनवमी का हमारे इस्कॉन में क्या इंपॉर्टेंस है, कोई सोचे? समहर दादर प्रभुपाद जी के समय से रामनवमी एक विशेष तिथि रही है। अब कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर उद्घाटन इसी तिथि पे हुए हैं, है ना? तो प्रभुपाद जी ने कौन से मंदिर का उद्घाटन किया था इस दिन? श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन का, और उसके 98 के अंदर हमारे श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर का उद्घाटन हुआ था। आप में से कितने भक्त लोग थे उस समय उद्घाटन में? कोई था? बस एक दो, कुछ ही भक्त लोग थे हम लोग। तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, वे आए थे। आज के दिन कहां पे उद्घाटन हो रहा है? राजकोट गुजरात के अंदर भव्य मंदिर, ग्लोरी ऑफ सौराष्ट्र। प्रभुपाद जी के शिष्य थे महाविष्णु गोस्वामी महाराज, उन्होंने गुजरात में बहुत प्रचार किया था, उनकी इच्छा थी कि राजकोट में प्रचार हो, तो बहुत सुंदर मंदिर वहां पे बना है। आपके कईयों के पास फोटो भी आए होंगे उस मंदिर के जो है तो, और मुझे याद नहीं, लेकिन कई मंदिरों का उद्घाटन आज के दिन हुआ है। और इसके बाद जो अब नेक्स्ट फेमस तिथि होती थी वह नित्यानंद त्रयोदशी, उसके बाद में इस्कॉन के अंदर। तो मुझे अभी तक कारण समझ नहीं आया कि क्या कारण है, लेकिन फिर भी एक बहुत शुभ तिथि है। और सब भक्तों को मैंने जान ये लिया, क्योंकि रामायण के विषय में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं रहती हैं, तो आई ट्राई टू कवर समथिंग कि कुछ इसमें हमें गलत शिक्षा ना प्राप्त हो। और रामचंद्र जीवन की शिक्षा में अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो गृहस्थ भक्तों के लिए या अविवाहित भक्त दोनों के लिए, संदेश तो मेरा नहीं था, भागवत का था, लेकिन फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रामचंद्र भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल।